அது பேர் பேசாருன்னு சொன்னா கேட்டு குரு பேசுவாங்க முகமது. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إكبار في الدروس بجوا محمد وعلى الله انتہائی شکر انتہائی احسان خدا نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی. خدا کا لطف ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عقیدت ان کی محبت سے نوازا ہے. آج کا دن ایک مبارک کا سعادت نورانی دن اور ان امام سے منصوب ہے جن کی زیارت کا شرف ہم میں سے ہر ایک کو اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود بھی حاصل ہوا ہے. مولا آٹھویں امام امام علی ابن مرتضیٰ علیہ السلام کو دے گا امام کے نام سے منصوب ہے اور امام کے القاب میں سے تسکیوں القاب میں سے ایک لفظ یا معین الضعفاء والفقراء ضعیفوں اور وطن سے دور رہنے والوں کے لیے مدد کرنے والے. ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم ضعیف ہیں اس دنیا کے اندر. دشمنوں کی کثرت, ہمارے اپنے اندر کے مسائل, ہمارے ضعف قابل بیان نہیں ہے حقیقت یہ. اور یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم توسلات انجام دیتے ہیں تو وہاں سے نصرت حاصل ہوتی ہے. اسی موقع پر عید کی مناسبت سے جو آج کا دن تھا اپنے امام کے حضور عرض عدد کے لیے گزارش پیش کرنے کے لیے اور ایک معنی میں ان سے عیدی حاصل کرنے کے لیے آپ سے درخواست کروں گا تین مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے چند دن یہاں رہیں گے پھر کہیں اور جائیں گے. اور یہ جو چند دن ہمارے یہاں پر ہیں یہی اصل میں ہمارا امتحان ہے. اب یہ خدا نے اتار کے لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس امتحان کو گزارنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب کی. اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ہمارے وہ امتحان ہیں جو خدا نے ہم سے چاہے ہیں, کچھ وہ امتحان ہیں جو ہم نے اپنے اوپر ڈال دی ہیں. خدا نے بہت ساری چیزیں ہم سے نہیں چاہی تھی, بلکہ الٹا یہ ہوا ہے کہ جو خدا نے ہم سے چاہا تھا وہ ہم نے سوچا کہ یہ تو ہمیں شاید امتحان دینا ہی نہیں, اور تو خدا نے ہم سے نہیں چاہا تھا ہم نے سوچا کہ اصل مقابلہ اسی کا ہے. نہج البلاغہ میں اسی نہج البلاغہ کے جملات کو سیکھتے ہوئے یہ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولانا فرمایا کہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جو خدا نے تم پہ واجب کیا تھا وہ تو واجب ہے ہی نہیں, اور جو خدا نے تم سے نہیں چاہا تھا وہ تم پہ واجب ہو گیا. مولانا نے فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ اچھا وہ کیا ہے جو خدا نے چاہا تھا کہ واجب ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو واجب نہیں, اور وہ کون سی چیز ہے جو خدا نے واجب نہیں کی تھی اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے؟ صحیح. تو ये समझने के लिए कि हम किसे वाजिब समझते हैं, हमें एक सादा सा काम करना होता है। हमें देखना होता है कोई आदमी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज को देता है, इसके नजदीक ये वाजिब है, बाकी चीजें इतनी अहम नहीं है। ईद का उनकी मुनासबत, मिलाद की मुनासबत है, मैं बात चीजें थोड़ी सी मौजू से हटके भी कह दूंगा ताकि जरा ईद का मौका है, थोड़ा सा इंसान के पास गुंजाइश होती है, गम के मौके में तो गुंजाइश नहीं होता, ईद के मौके में गुंजाइश होती है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद दुनिया में इसके ऊपर बहुत मेहनत की जाती है, ये मैं मुकदमे के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि कोई इंसान किसी चीज में महारत कैसे हासिल करता है, माहिर कैसे बनता है। मसलन अब हमारे काम को ले लें, हम मैं मुझे बोलते हुए कितने साल हो गए होंगे, मेरे ख्याल में 26 साल तो हो रहे होंगे, 24-25 साल, यानी जो बच्चे अपने बचपन में हमें सुनते थे अब वो बच्चे वाले हो गए, तो वो आते बेचारे कभी कभी कहते हैं मौलाना आपका जाने का इरादा नहीं है क्या, हम लोग बड़े हो गए। तो इंसान में महारत कब आती किसी चीज की, मसलन एक जुमला कहते हैं अगर कोई शख्स किसी काम को 10,000 घंटे कर ले, कभी लोग कम कहते हैं कभी ज्यादा भी करते हैं, तो वो उसको ऐसी महारत पे ले जाता है जो दुनिया में और लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि और किसी के पास इतना करने का टाइम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेयर है, नाम भी देना अच्छा नहीं है यहाँ पे ऐसी चीजों का, लेकिन बार बार क्रिकेट का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उससे पूछा कि भाई आप इतने बड़े बैट्समैन कैसे बने, तो उसने कहा कि मैं कोई बॉर्न बैट्समैन थोड़ी था, ऐसे थोड़ी कि मैं पैदा हुआ था, बार लोगों के लिए हम लोग कहते नहीं पैदा ऐसा हुआ था, ऐसा कोई नहीं होता, इंसान बनता है ना कि वो पैदा ही ऐसा होता है। मसलन उससे पूछा आप कैसे हुए, उसने कहा मैं एक सादा सा काम करता हूँ, मैं हर रोज मसलन 300 बॉलें हर रोज खेलता हूँ, एक ओवर में 6 बॉलें होती है मेरे ख्याल में, तो 300 बॉलें खेलने का मतलब है कितने ओवर खेलता है, 50 ओवर हर रोज। कहने का मैं 50 ओवर खेलता हूँ, तो उसने मुझे 50 ओवर करवाता कौन है हर रोज, उसने करवाता नहीं हूँ मैं, दरवाजे से पोल से किसी भी रॉड से बॉल टांग देता हूँ, उसे मारता हूँ, वो जाती है वापस आती है, हर दफा नई तरह से आती है, तो वो मेरा बॉलर बन जाती है। इस तरह मैं हर रोज मसलन 300 बॉलें जरूर खेलता हूँ, तो उसने कहा कि हर रोज, कहने का हाँ हर रोज, छुट्टी नहीं करती, कहने में तो उसने कहा कि जिस रात मेरी शादी हुई उसके अगले दिन सुबह को जाके मैंने 300 बॉलें खेली हैं, और जो 300 बॉलें खेलता हूँ तो पूरी किट बांध के खेलता हूँ, ऐसे नहीं कि मसलन पजामे में खड़े होकर 300 बॉलें खेल, नहीं पूरी किट बांध के बिल्कुल बॉलर की तरह जैसे इंसान खड़ा होता है खड़ा होता हूँ, 300 बॉलें खेलता हूँ रोज, तो फिर मैं यहाँ पहुंचूंगा। अच्छा ये कोई अचंभे की बात नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं, जो ये करेगा वो हो जाएगा, अगर कोई इतनी मेहनत करे हो जाएगा, इसमें क्या मसला है। अब सवाल ये आप अपनी जिंदगी का असली वक्त कहां पे लगा रहे, इससे पता चलेगा कि आपने किसे वाजिब समझा। तो मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा फर्ज कर लेते हैं भाई 8 घंटे 10 घंटे वीडियो गेम खेलता है, इसका मतलब है इसने अपनी जिंदगी में जो वाजिब समझा है वो वीडियो गेम है। या मिसाल के तौर पर एक आदमी को आम जिंदगी में सोने के लिए आराम करने के लिए 6 से 8 घंटे की जरूरत होती है, मेडिकल साइंसेज में पहले लोग कहते थे बाइबल की तरह 8 घंटे कम से कम सोना है, अब कहते नहीं है फजूल बात, कोई बॉडी ऐसी होती है जो 6 घंटे में 8 घंटे का आराम कर लेती है, कोई बॉडी ऐसी होती है जिसको 10 घंटे से कम पे आराम नहीं मिलता, ये ऐसी स्टैंडर्ड नहीं है कि 8 घंटे हर सूरत में सोना है, क्योंकि ये कहते हैं नहीं 6 से 8 घंटे तकरीबन सोना होता है। अच्छा अगर एक आदमी इससे ज्यादा सो रहा है जितनी उसकी जरूरत है, इसका मतलब क्या है, इसने अपनी जिंदगी में वाजिब सोना समझा। हमारे गांव के हाथ मशहूर हैं फजूल में बैठ के बातें करने के लिए, चाय खानों के ऊपर जाएंगे कोई बंदा मजाक में कहता कहता मौलाना एक चाय की कप पे 2 फिल्में से कम देख के नहीं आते, हर रोज का काम यही है, हर रोज का काम। इसका मतलब क्या है? इसकी जिंदगी में वाजिब ये है, इसकी जिंदगी वाजिब ये है। अच्छा, आप इसमें नुकसान क्या है? अगर एक आदमी इसको वाजिब समझे, उसको वाजिब समझे, नुकसान ये है कि इसकी कीमत भी वही है। फिर इसकी कीमत वही चीज है जिसको इसने वाजिब समझा है। तो मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने वीडियो गेम खेलना समझना वाजिब है, इसका मतलब इसकी कीमत क्या है वीडियो गेम। एक बंदे ने ये समझा है कि भाई मेरे लिए मसलन दो फिल्में देखना वाजिब है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसकी कीमत क्या है ये दो फिल्में। अब आपको और मुझे अपनी जिंदगी में ढूंढना पड़ेगा हमारी कीमत क्या है। वो ढूंढने के लिए क्या करें? आप ही देखो, आप किसे वाजिब समझ लो। अब मैं आपको एक आसानी से एक जुमला बोल देता हूं, हमारे माशरे में कोई किसी चीज को वाजिब समझे या ना समझे, एक चीज को सब वाजिब समझते हैं। वो ना करे तो वो हमारे माशरे के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता। वो क्या है? वो है कमाना। ये बंदा अगर अच्छा कमा ले तो सब सही, और अगर अच्छा ना कमा सके सब गलत। आपके यहां जो मंजिलों में आएंगे, नमाजों में नमाज पढ़ने आएंगे, इनमें से भी इज्जत उसको मिलेगी जो ज्यादा कमाने वाला होगा। इसका मतलब है हम जिस नमाज को वाजिब कह रहे थे उसकी महफिल में भी इज्जत उसको है जो कमाने को वाजिब समझता है। अब आपको वाला का जुमला समझ में आ रहा है? इमाम ने फरमाया जिसको खुदा ने वाजिब करार दिया था तुमने तो उसको ऐसे किनारे पे लगा दिया जैसे वाजिब था ही नहीं, और जिसको खुदा ने वाजिब नहीं कहा था तुम ऐसे लेके बैठ गए हो जैसे यही वाजिब है। अच्छा, अब हमने एक हिस्सा तो देख लिया, जो खुदा ने हम पे वाजिब नहीं किया था वो क्या था? कमाना। ये हम पे वाजिब नहीं किया था। आप कहीं मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं? क्या खुदा ने हलाल कमाना वाजिब नहीं किया? हलाल कमाना वाजिब किया। मैं एक बात पूछता हूं, क्या खुदा ने हमें रिस्क पहुंचाने का वादा नहीं किया था? तो उसने कमाने का वादा नहीं किया, वाजिब नहीं किया है, उसने मेहनत करना वाजिब किया है, रिस्क का वादा उसने अपने ऊपर खुद लिया हुआ है। उसने हमसे नहीं कहा तुम कमा के लाओ, उसने हमसे कहा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। हम तुमसे रिस्क का सवाल नहीं कर रहे, रिस्क हम तुम्हें देंगे। आप क्या छुपा रहे? अच्छा, हमने शुरू से क्या वाजिब समझा है? कमाओ, जो कमाएगा उसको इज्जत मिलेगी, जो नहीं कमाएगा इज्जत नहीं मिलेगी। आपने बच्चों के अंदर देख लो, आपका जो बच्चा कमा के ना लाए क्या एहतराम दोगे उसे? कुछ भी नहीं। अच्छा, आप मसला ये कि आप कहें भाई मौलाना क्या आप हम सबको बेरोजगार बनाना? नहीं, बेरोजगार नहीं बनाना, मेहनत करवाना। क्यों? कमाई का वादा तुम्हारे सर पे नहीं होना चाहिए, कमाई का वादा खुदा के ऊपर है, खुदा देगा। तुम्हारा मेरा काम क्या होना चाहिए? मेहनत करना। किस चीज में मेहनत करना? अगर हमने ये समझ लिया ना हमारा काम मेहनत करना है, देना खुदा ने, तो हमने से कोई हराम पे मेहनत नहीं करेगा, हमने कोई हराम पे नहीं जाएगा। ये जो हमने समझा है ना कि कमाना हमारी जिम्मेदारी है, और हलाल से नहीं मिलेगा तो कहां से कमाएगा? हराम से कमाएगा। हम समझ रहे हैं कमाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, कमाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी मेहनत करना है। किस पे मेहनत करना है? जाहिर है हलाल पे मेहनत करना है। बाकी देगा कौन? खुदा देगा। उसका वादा कुरान करीम के सही वादा किया। अच्छा, ये तो वो हो गया जो हमने वाजिब समझा अपने ऊपर, जबकि खुदा ने वाजिब नहीं किया था। जो खुदा ने वाजिब किया था वो क्या था? जो खुदा ने वाजिब किया था वो क्या था? आप कहेंगे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज पे जाना। पैसों की तो बात ही ना करो, वरना मामला वैसे ही खराब हो जाएगा। तो मैं जब भी फुरुदी भी गिनाने लगता हूँ ना, नमाज रोजा हज पर इधर तक आता हूँ, जकात फ़ौम जात वगैरह की बात नहीं करता, क्योंकि वो जैसे नाम सुनेंगे इनका मूड खराब हो जाएगा। और जिहाद तो खैर छोड़ दो, फिर तो पूरी दुनिया का मुल्क खराब हो जाता। हम समझ रहे ये वाजिब होगा, हाँ ये वाजिब है, इससे ज्यादा भी एक और चीज वाजिब है, वो क्या है? मुझे आपकी हजरत दास करना है, उसकी मुनासबत से एक दो रिवायतें अर्ज करनी है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मैं हमेशा अपने से एक सवाल पूछता हूँ, देखिए भाई मैं तालिब इल्म रहा कौम में 12 साल, तालिब इल्म बना था 17 साल की उम्र में, अब मेरी उम्र 55 से ऊपर है, ठीक है, तो तकरीबन 40 साल तकरीबन गुजर गए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मुझ में और दूसरे में कोई फर्क ना हो तो आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, तुमने 40 साल कहाँ गुजारे? कि भाई अगर तुमने 40 साल दीनी तालीम में गुजार दिए और एक आदमी ने 40 साल दीनी तालीम में नहीं गुजारे और तुम दोनों एक जैसे हो, तो या वो बहुत आगे है या तुम बहुत पीछे हो, कोई तो बात है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हमारे बच्चे भी स्कूलों में जाएंगे, सबके बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे कॉलेजों में जाएंगे, सबके बच्चे जाते हैं, हमारे बड़े गवर्नमेंट की जॉब्स में जाएंगे, सबके जाते हैं, हमारे बड़े प्राइवेट जॉब्स में जाएंगे, सबके जाते हैं, हमारे बंदे कुछ लोग कारोबार करेंगे, बाकी लोग भी करते हैं, तो अहले बैत का मानने वाला होने में फर्क कहां पड़ता है? अच्छा मनफियात को तो मैंने कहा नहीं, बाकी लोग भी धांधली करते हैं, हम भी करते हैं, बाकी लोग ऑफिस में जाके रिश्वत खाते हैं, हमारे भी खाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ मशहूर है हमारे दोस्तों में, वो कहते हैं भाई अगर किसी ऑफिस में काम करवाना हो ना तो किसी अहले बैत के मानने वाले के पास न जाना, वो दोस्ती में रख के काटेगा। फिर फर्क क्या है? आप खुद सवाल करो अपने आप से, बाकी लोग भी यही सब कुछ करते हैं जो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो वो जो हम अहले बैत के मानने वाले हम फर्क कहां है? अच्छा अभी आपने सोचा था कि भाई अगर मैं 40 साल दीनी तालिब इल्म रहा हूं उसमें दूसरे में फर्क नहीं, तो बेकार के 40 साल के कहां गुजारे थे? तो मैं आपसे सवाल करता हूँ फर्क कहां होना चाहिए था? अब मैं चंद फर्क आपकी हिदमत चांस करता हूँ जिसको हम लोग कहेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि वो हमसे क्या फर्क मांग रहे हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसे हम ये कहेंगे ना, तो फौरन कोई हमसे जवाब में कह सकता है मौलाना बाकी लोग नमाज पढ़ते हैं ना एक खास तरीके से पढ़ते हैं, हम लोग नमाज एक और तरीके से पढ़ते हैं, बाकी लोग रोजा रखते हैं वो एक खास टाइम पे रखते हैं, हम लोग जो रोजा रखते हैं वो एक और टाइम पे रखते हैं, बाकी लोग अय्याम आज़ा में उस तरह हज़रदारी नहीं करते, हम एक खास तरीके से हज़रदारी करते हैं, सही है? यही कहेंगे ना जवाब? अच्छा मैं एक सवाल अपने आप से पूछता हूँ, जब मासूमीन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा आपके मानने वाले को कैसे पहचाने, तो उन्होंने इनमें से कोई बात कही है? नहीं, कभी नहीं। उन्होंने क्या कहा? भाई एक मसला यह है कि मैं मुल्क के सदर के साथ अपना एक रिश्ता जोड़ता हूं, मैंने जोड़ा। दूसरा मसला यह कि वो मेरे रिश्ते को मान भी रहा है या नहीं मान रहा है, तुम जोड़ते रहो। मैंने उनसे एक रिश्ता जोड़ा है, किस बात पर? मैं हाथ खोलता हूं दूसरे हाथ बांधते हैं, मैं 5 मिनट बाद खोलता हूं रोजा, वो लोग 5 मिनट पहले खोलते हैं, मसलन उन्होंने इस रिश्ते को रिश्ता माना है? उन्होंने किसे रिश्ता माना है? फिर बात में नहीं ना, ये तो मैं रिश्ता जोड़ रहा हूं। मैं एक रिवायत अर्ज करता हूं कि भाई उन्होंने कहा है कि हमारा वाला हमारे वाला बंदा ये होगा, अब उसके बाद मैं कुछ भी लगाता रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं लगा रहा हूं ना, इख्तियार मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं कह रहा हूं मेरे बादशाह से एक रिश्ता है, ओ भाई वो तो पूरी दुनिया बोलेगी, ये बताओ बादशाह उस रिश्ते को मान भी रहा है या नहीं मान रहा है? एक रिवायत अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, ताकि इंशाअल्लाह इसको हम देख लेंगे वो हमें कब मान रहे हैं अपना। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद एक आपसे दरख्वास्त करूंगा इससे पहले कि भूल जाऊं, अगर आप पूरा एक दिन गुजार लें और किसी दिन एक दिन में एक रिवायत भी अहले बैत की ना पढ़ें ना सुने, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये दिन आपने जाया किया, गारंटी से कह रहा हूं। अगर कोई दिन आपने गुजारा हो 24 घंटे और उसमें कोई एक रिवायत नहीं सुनी, कोई एक रिवायत नहीं पढ़ी, इसका मतलब क्या है? ये दिन तुमने जाया किया, तुम एक खजाने के ऊपर बैठे थे, दुनिया भर के सामने कहते रहे कि मैं फकीर हूं मैं फकीर हूं मेरी मदद करो, तो तुमने उस खजाने से नहीं निकाला। अब ये हमारे बच्चे मर रहे हैं, किसी को वहां एडमिशन चाहिए, किसी को यहाँ एडमिशन चाहिए, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है, कोई किसी के जूते चाट रहा है नौकरियां लगवाने के लिए, कोई किसी के पास जाके गुलाम बना खड़ा है पता नहीं कोई पोस्ट लेने के लिए। ये क्यों नहीं सोचते हैं हम हो गए हम लोग कि जो खजाना उन्होंने किया था उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? ये रिवायतें क्या सिर्फ उन्होंने फुहार के लिए देंगी? अच्छा, हमारी चार असली किताबें उनमें से एक किताब है मन ला यहज़रुहुल फकीह, इसका मतलब क्या है? कोई एक मुझे बताएगा इस जुमले का तर्जुमा क्या है? मन ला यहज़रुहुल फकीह, जहां पे फकीह ना हो, इसका मतलब ये किताब किसके लिए है? जो फकीर नहीं है। आप फकीर हैं, आपके लिए है या नहीं है? कब पढ़िए? ये जो नहजुल बलागा में खुतबे हैं 250 के करीब है, ये इमाम ने मदरसों में बैठ के दिए? नहीं, एक भी खुतबा मदरसे में बैठ के नहीं दिया। अच्छा, उस आने मदरसे से ही नहीं, ये खुतबे कहां दिए? कोई बाजार में खड़े होकर दिया है, कोई मैदान जंग में दिया है, कोई मस्जिद में दिया है, कोई मुलाकात के लिए आया था उसके सामने दिया है, सारे इस तरह दिए। ये सिलेक्टेड गैदरिंग थी या पब्लिक के लिए थे? पब्लिक के लिए थे। अभी देखो कुछ समझ में आ रहा है उसमें? हमने क्या किया अपने साथ? क्यों अपने आप को दूर किया? दुनिया भर की अलम गलम मोबाइल के ऊपर पढ़ने को तैयार है, एक रिवायत पढ़ने को तैयार नहीं। क्या सितम किया है? अच्छा, काश काश ऐसा होता, अल्लाह वो खुद एक बदबख्ती होती, लेकिन काश ऐसा होता कि दुनिया में ही बेहतर हो जाते, वो भी नहीं हुए, वो भी मुसीबत के मारे। भाई काश दुनिया ही बना लेते, वो भी नहीं बनाई, तो ना आखरत बनाई ना दुनिया बनाई, तो बनाया क्या? और उसके बाद दावेदार क्या है? दावेदार ये क्या उनकी मानने वाले? वो बंदा बोला ये दावा एक तरफा क्यों कर लो, दो तरफा करो, उनसे भी तो पूछो कि आपका मानने वाला है कौन। तब ये रिवायत देखें, ये रिवायत बोला पांचवें सरकार इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम बार फिर मौला की जात पे दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। ये जुमले मैंने इमाम के जुमलों से सीख कर कहे थे आपसे, जुमले अभी सख्त लगे ना आपको, इमाम की जुमले से थे। इमाम ने फरमाया कैफा मन इंतहला फौल शिया व अहबना अहलल बैत। जाबिर, ये जाबिर इब्ने यजीद जौफी भी हो सकते हैं, कम इम्कान है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी वो भी हो सकते हैं, पांचवें इमाम के जमाने में मौजूद थे जाबिर। लेकिन ये बेहतमाल कभी जाबिर इब्ने यजीद जौफी होंगे, वो उनका मकाम बहुत रिवायतें उनसे बहुत ज्यादा है मौला पांचवें इमाम से। كيف من انتهد قول الشيعه ادبل، جو شخص شیعہ ہونے کا دعوے دار ہے کیا اس کے لیے کافی ہے کہ صرف کوئی یہ کہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں؟ یہ کافی ہے؟ امام سوال فرما رہے ہیں یہ کافی ہے؟ ظاہر ہے امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے صحیح؟ کیف من انتہى قول الشیعہ، کیا یہ صحیح ہوگا شیعہ کا یہ کہنا احبنا اہل البیت کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں؟ اس کے بعد فرمایا واللہ خدا کی قسم، اللہ اکبر، امام معصوم خدا کی قسم کھائے گا صحیح، بات میں وزن بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، امام معصوم قسم نہ بھی کھائے حجت ہے، ایک کلمہ بولے حجت ہے، قسم خدا کی کھانی، پس منظر میں ایک اذان ہو رہی ہے درود پہ دیو محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ
وسلم فواللہ ما شیعتنا الا من اتقلا واتاه، خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے سوائے اس کے جس نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا ہو، اللہ کی اطاعت کی، ہمارا شیعہ نہیں، وما كانوا يعرفون يا جابر الا بالتواضع والتخشع والانابه وكثره ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعاهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين واليتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير. امام نے فرمایا یہ نہیں ہوگا جب تک کہ ایسا نہ ہو، کیسا نہ ہو، ایک ایک کر کے میں خدا کی قسم ہمارا شیعہ بس وہ ہوگا کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اور اے جابر ان لوگوں کی پہچان اس کے سوا اور نہیں ہے، اب امام پہچان پر نہیں، ان لوگوں کی پہچان یہ ہے، اچھا آپ اور میں ایک کام کر سکتے ہیں، دلی دل میں ڈھونڈنا یہ ہم نے ہے، امام نے کہا یہ پہچان ہے، تم نے پہچاننا ہے نا یہ دل، یہ ہے میں نہیں، وما كانوا يعرفون يا جابر، ان کو پہچان نہیں پاؤ گے جابر سوائے اس سے، کس سے؟ نمبر ایک التواضع، یہ تکبر نہیں دکھائیں، تکبر نہیں دکھائیں، اچھا کس چیز کا تکبر نہیں دکھائیں گے؟ کسی بھی چیز کا، پیسے کا دکھائیں گے؟ پیسہ بدترین چیز ہے تکبر دکھانے کی، دنیا میں پاکیزہ ترین چیزیں اگر دنیا میں کوئی ڈھونڈے یا علم ہے یا تقوی، ان پر بھی تکبر دکھائے تو ذلیل ہے، اور اگر کوئی پانچ چیز پہ تکبر دکھائے وہ تو ذلیل پھر ذلیل ہے، بھائی دنیا میں سب سے پاکیزہ چیز کیا ہے؟ تقوی، اور پاکیزہ چیز کیا ہے؟ علم ہے، اگر کوئی علم اور تقوی پر تکبر دکھائے تو کیا مقام ہے اس کا؟ شیطان کے برابر، جب دنیا میں پانچ چیزیں کیا ہیں؟ پانچ چیزیں دولت، اور اس پہ کوئی تکبر دکھائے، دنیا میں ایک اور پانچ چیز ہے وہ کیا؟ ذلیلوں کے درمیان شہرت پانا، اگر کوئی ذلیلوں کے درمیان شہرت پانے پر تکبر دکھائے کہ میں ذلیلوں کے درمیان مشہور ہوں، اس کا مقام کیا ہے؟ گندی نالی کی کیڑے کے نیچے گیا ہے، کم سے کم تھوڑا اوپر ہی رہتا، دلیلوں میں شہرت پہ تکبر دکھا رہا ہے، بھائی کم سے کم ایمانداروں میں شہرت پہ تکبر دکھاتے، جابروں میں شہرت پہ تکبر دکھا رہا ہے کہ میں جابروں میں مشہور ہوں، کہ میں مثلا ظالم ظلم کرنے والوں میں میں مشہور ہوں، ان میں تم مشہور ہو، اس کا مطلب ہے تم بدترین ہو، امام نے فرمایا ان کی شہرت کس بات پر ہے؟ ان کی شہرت نمبر ایک ان میں تکبر نہیں ہوگا، ان میں تواضع ہوگا، وما یورفون وما کان یورفون یا جاب الا بالتواضع والتخشع، تخشع کیا؟ تخشع ہم کہیں گے خوف خدا، سادہ ترین لفظ میں، اچھا خوف خدا کیا ہوگا؟ آپ کبھی حج پہ جائیں میدان عرفہ کے اندر یا مثلا طواف کے اندر، بدترین لوگ بھی یوں کر کے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، ये कौन सा खुदा है? ओ भाई, कौन सा यजीद खाने काबा के बराबर से खड़े होकर तकब्बुर दिखाएगा? कौन सा यजीद दिखाएगा? खौफ खुदा ये नहीं है जो तुम मीना के मैदान में खड़े होकर तुम कर रहे हो। खौफ खुदा ये कि जब तन्हाई में गुनाह करने जाते हो खुदा याद आता है नहीं आता? ये खौफ खुदा। खौफ खुदा मसलन एक बादशाह के सामने खड़े और कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई गलती नहीं कर रहे, तुम्हारा बाबा भी नहीं कर सकता है, बादशाह है, मारेगा तुम्हें। इंसान हो तो तुम कमजोर के सामने ना पड़ो, फिर बात है। खौफ खुदा को आसमान में जाके खड़े हो, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं और मैं कहूँ आपने मुझे कोई गुनाह करते तो नहीं देखा, पागल हूं कि मैं यहाँ बैठ के गुनाह करूंगा? मैं गुनाह करूंगा कम से कम वहां जाके करूंगा जहां कोई जानने वाला ना देख रहा हो। तो खौफ खुदा क्या होगा? सबके सामने बैठ के पाकीज़ा रहना? नहीं, ये खौफ खुदा नहीं। खौफ खुदा ये अकेले में पाकीज़ा रहे। अभी कितने लोग पाकीज़ा रह गए? किसी को 5 रुपए दे दो और उसको बोलो कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखो ये ईमानदारी दिखाएगा नहीं दिखाएगा? आप में से कुछ लोग काम करते होंगे अभी बाजारों में इधर उधर, कोई आदमी आपसे कह रहे हैं ये चीज लेकर आओ, ये चीज लेकर आओ, सही है? आप मुझसे पूछा मसल, मैंने उससे पूछा भाई ये कितने रुपए की मिलेगी? मसल वो कह रहे हैं 100 रुपए फुट मिलेगी। अच्छा, मैं बाजार गया, मुझे वही चीज 95 में मिल गई, सही? अब वो क्या तवक्कु कर रहा है कि कितने मिलेगी? उस अपनी जबान से जाए 100 रुपए मिलेगी, सही? और मुझे मिल गई 95 में, ठीक है? अब मैं वही लूंगा और दुकानदार से कहूंगा 100 की रसीद बनाएगा। मैं उसके पास कहूंगा वो 100 उसको पकड़ाऊंगा 100 की रसीद, सवाल करेगा मुझसे? खुद मुंह से कहा था 100 की मिलेगी, सही है? क्या बेचा मैंने? मैंने 5 रुपए पे अपना दीन बेचा। क्यों? क्योंकि ये वो बात थी जो सिर्फ खुदा जानता था, मैंने बेच दिया। इस आदमी ने मुझ पर भरोसा किया था, मुझे 5 रुपए का चूना लगाने का मौका मिला, मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं गालियां देता हूँ सियासतदानों को कि ये कितने जलील लोग हैं, ये मुल्क का पैसा खा रहे हैं, तुमको 5 रुपए का मौका मिला तुमने छोड़ा था, उनको क्यों गालियां दे रहे हो? आलम यह है, मस्जिद के काम के लिए किसी आदमी को 4 रुपए दे दो ना, अब बस भूल जाओ, ये वापस नहीं लाएगा, ये जब तक पूरा बिल नहीं बनाएगा वापिस नहीं लाएगा। इसके बाद हम कह रहे हैं हमें खौफ खुदा है, कहां का खौफ खुदा है? किसी आदमी की इज्जत मेरे हाथ में आ जाए फिर देखो मैं क्या तमाशे करूंगा। खौफ खुदा दूसरे की इज्जत छुपाना बचाना होता है या खराब करना होता है? यकीन मानो, मैंने लोगों को देखा है कितनी सी ऐसी रकम पर जिसका कोई हिसाब नहीं है दुनिया के हिसाब किताब में, उसके ऊपर किसी दीनदार इंसान को बेइज्जत करना माशरे के अंदर वो मामूल है, मामूल है। ये खौफ खुदा है। कहां का खौफ खुदा? अच्छा, हमने समझाए कि क्योंकि हमारी मस्जिद का नाम ये है ना, हमारी शनाख्त के लिए काफी। उन्होंने क्या कहा? मुझे क्या कहा? उन्होंने फरमाया क्या इनकी पहचान सिर्फ किससे होगी? उन्होंने फरमाया पहचान होगी तवाज़ो से, इनमें तकब्बुर नहीं होगा, तवाज़ो दिखाएंगे। नंबर 2 क्या है? तखश्शो, हशियत होगी इनके अंदर, खौफ खुदा होगा, अर्ज कर दिया। नंबर 3 इनाबा, इनाबा क्या होता है? तो हमारे अच्छे नाम बुरे लोगों के साथ लग गए हैं, बड़ी मुसीबत आ गई माशरे के अंदर। मसलन एक बड़ा अजीब आदमी हमारे यहाँ बन गया जावला, जावला बड़ी अच्छी चीज होती है, हक की रोशनी, तो नाम किसी गलत आदमी का पड़ गया था तो एक मुसीबत आ गया हमारे। अब कोई ये नाम नहीं रखेगा, हमारे अच्छों में नहीं रखेगा। इनाबा का मतलब क्या होता है? इनाबा का मतलब होता है सादा लफ्जों में खुदा के साथ सरगोशियां करना, खुदा के साथ तन्हाई में गुफ्तगू करना, 1-to-1। मसलन खुदा से कह दो, खुदा मैं तेरा बहुत एहसान मंद हूँ, खुदा तूने बड़ी मेरी मदद की, खुदा तूने बड़ी नेमतें दी हैं, 2 शक्तियां भी आई हैं, لیکن میں قبول کروں. امام فرما رہے ہیں شیعہ کی شناخت یہ ہے کہ یہ انابہ کرتا ہے, انابہ کرتا ہے. اچھا میں نے زندگی میں دو دفعہ یہ کام کیا ہے, دو دفعہ کرنا کافی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ سے ایک آدمی کہے کہ بھائی یہ آدمی داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی والا ہے, صحیح ہے, اور اس نے ہر سال دو دن داڑھی رکھی ہو تو یہ کافی ہے داڑھی والا ہونے کے لیے. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار اتنا ہونا چاہیے کہ زیادہ تر وہ اس میں نظر آئے. تو میں کہوں گا بلکہ زیادہ تر نہیں, بہت کم اس کی کٹی ہوئی نظر آئے, ورنہ میں نہیں کہوں گا داڑھی والا ہے. تو کہوں گا یار پتا نہیں ہوتا اس کا, کبھی رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا. امام فرما رہے ہیں ہماری شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ یہ انابہ کرتا ہے. انابہ کرتا ہے کیا مطلب؟ یعنی تنہائی میں خدا سے کلام کرتا ہے. کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اچھا باقی تمام چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. مولانا ہمارے یہاں کتابیں نہیں ہیں نا, اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور جناب ہمارے یہاں عالم نہیں ہے اس لیے معاملہ خراب ہو گیا. یہ جو ہے نا ذاکری بھی سب دین بیچ گئے. اچھا وہ صحیح ہے, یہ تم خدا سے کلام کرو, اس میں تمہیں کتاب چاہیے؟ اس میں تمہیں پہلے حج کرنا ہے کیا؟ پی ایچ ڈی کرنا ہے پہلے؟ کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے, اکیلے بیٹھو خدا سے کلام کرو. اس میں کیا چاہیے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ جانتا ہے, کیونکہ دماغ میں اتنی چیزیں اور بھری ہوئی ہیں کہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, آپ موبائل ہاتھ میں لے لو, واٹس ایپ کھول لو, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا کسی کی چیٹنگ ویٹنگ پہ آ جاؤ, دو تین گھنٹے گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم کھا سکتا ہوں, آپ ذرا سجدے میں جاؤ, خدا سے کلام کرنا شروع کرو, صحیح ہے, 20 سیکنڈ ایسے لگیں گے جیسے صدی بیت گئی ہے. ایک منٹ ایسا لگے گا جیسے بھیا میں تو پتہ نہیں کب سے پڑھا ہوں سجدے میں. کیا ہوا؟ ایک منٹ گزرا. اگر یقین نہیں آیا نا تو اسٹاپ واچ لگا لو, سجدے میں جانے سے پہلے اسٹاپ واچ لگا دینا, اور کہتا ہے اب میں 5 منٹ بعد سر اٹھاؤں گا. یقین مانے 5 منٹ زندگی کے سخت ترین 5 منٹ بن جائیں گے. کیوں ایسا ہے؟ دماغ میں اور بہت کچھ بھرا ہوا, اتنا بھرا ہوا ہے کہ اب اس میں خدا نہیں آ پا رہا. اور عجیب بات یہ کہ امام نے کہا کہ ہمارے ماننے والے کی نشانی یہ ہے کہ اس میں یہ ہوگا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب مجھے واقعاً بعض اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا, ہم نے لوگوں کو لوگ بوڑھے ہو گئے, ہم لوگوں کو سنتے سنتے ہم نے انہیں سکھایا کیا تھا؟ اگر ہم انہیں وہی نہیں سکھا پائے جو امام کہہ رہے ہیں میرے ماننے والے کی پہچان اس سے ہے, ہم نے سکھایا کیا ہے؟ کیا سکھایا پھر انہیں؟ واقعاً سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات کہ ہم کیا سیکھ رہے تھے اب تک, بوڑھے ہو گئے ہم لوگ. امام نے فرمایا کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ تواضع اختیار کرتے ہیں, یہ تفشع ہے ان کے اندر, ان کے اندر انابہ ہے. کثرت ذکر اللہ, ذکر خدا کی کثرت ہے, کثرت ہے ذکر خدا. اچھا ہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے. اب ذکر خدا کیا ہے؟ جو ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ذکر خدا ہے. ہر وقت اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ, یہ ذکر خدا ہے؟ نہیں, یہ ذکر خدا ہے. ذکر خدا کسے کہتے ہیں؟ ذکر خدا اسے کہتے ہیں کہ جیسے میں کوئی کام کرنے لگوں مجھے یاد آئے کہ خدا ہے, یہ ذکر خدا. 50,000 دفعہ سبحان اللہ کہہ دو اور خدا یاد نہ آئے, یہ کوئی ذکر نہیں ہے, ورد ہے, اس کو ہم ورد کہتے ہیں. ذکر انگریزی میں اگر اس کو ترجمہ کریں نا تو آسان ہو جاتا ہے. ذکر کو انگریزی میں ترجمہ کریں تو کہتے ہیں ریمائنڈر, ریمائنڈر یاد دلائے. کیا کر لو؟ خدا ہے, تم کیا کر لو؟ ابھی یہاں پہ یہاں بیٹھے ہوئے اللہ یاد آئے یہ کمال ہے, یا باہر یاد آئے یہ کمال ہے؟ یہاں کون بے وقوف اور یاد کرے گا؟ میں بتا رہا ہوں, مثلا یہاں بیٹھ کے میں کیا یاد کروں گا؟
और क्या करूंगा
भाई, तुमने बिठाया जिक्र करने के लिए, जिक्र करूंगा और क्या करूंगा, ये महारत है। ये महारत नहीं है, तो बाहर याद आता है नहीं आता, ये महारत है। बाहर खुदा याद आता है नहीं आता। अच्छा कहाँ याद आना चाहिए? मसलन आप ऑफिस में बैठे हैं, एक बंदा खुदा आपके पास आया, आपको बताया मिस्कीन आदमी, ज़ईफ, कुछ नहीं कर सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके साथ। याद आता है खुदा की कमजोर के ऊपर रहम करना, याद आता है। मसलन एक रिश्तेदार है, कमजोर है, रिश्तेदारों में भी ताकत और कमजोरी किस पे आजकल? पैसे पे, और किस पे? न बूढ़े पर है, न जवान पे है, न सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मिट गया। एक जमाना था, हमारे बड़ों को याद होगा, वो ये कि हम लोग काम ये करते थे, खानदान में बड़ा कौन है इस वक्त? तो मसलन चार आदमी बैठे हैं ना, तो वो बात हो रही है, तो वो अचानक एक आदमी बोल देता था जिसके बारे में गुमान ये था कि ये बड़ा है, तो अब कोई नहीं बोलता था, कहते नहीं अब ये बुजुर्ग ने बात कही, खत्म। पहले एक मामला था, अभी अब क्या रह गया खानदानों में, ताकतवर कौन है? उसने कुछ बोल दिया, मामला खत्म हो गया, अब उसकी चली गई। जब दुनिया में ताकत के बल पे एहतराम मिलने लगे ना, तो ये दौर कमीनों का होता है, कमीनों का दौर होता है। क्यों? दौलत कमीनेपन से कमाई जा सकती है, दौलत कमीनेपन से आ सकती है। दौलत चोरी करके नहीं आती क्या? आती है। लूट मार करके नहीं आती? आती है। अगर किसी माशरे में चोरी लूटमारी से भी इज्जत मिले, इसका मतलब है दौर कमीनों का, यहाँ इज्जतमंद दलील होंगे, यहाँ इज्जतदार दलील होंगे। अहले बैत का कलाम है ना, ये हमें कमीनों के दौर में सेट नहीं होने देगा। अहले बैत का कलाम हमें इस कमीनों के दौर से बाहर निकालेगा कि तुम कहीं इसके अंदर फिट नहीं हो जाना, वरना सुबह से शाम तक सब लोग क्या सिखाएंगे, फिट हो जाओ। और जो नहीं पढ़ोगे ना कलाम अहले बैत, तो फिट हो जाओगे। कितना ही दावा करो मैं फिट नहीं हुआ हूं, तो फिट हो चुके हो। सिर्फ एक रास्ता है, कुरान और अहले बैत से सीखो। ये अबदी कलाम है, ये हमें गलत दौर में फिट नहीं होने देगा, ये हम निकाल देगा। ये वो कलाम है, इसमें जो क्वालिटीज हैं कि हमें कमीनों के दौर में फिट नहीं होने देंगे, ये हमें बचा के रखेंगे। लेकिन मुश्किल हमारी क्या है? मुश्किल हमारी यह है कि हम लोग हम दीन के नाम पे भी वो सुनना चाहते हैं जो हमें ना बताए कि हमें ये नहीं करना। हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें कहे कि जो करना है करते रहो। तो ऐसे मामला सही नहीं होगा, फिर हम कहीं और चल जाएंगे। और आप सबको बताए, ये जो हमारे साथ हो रहा है माशरे के अंदर, उसकी एक वजह यह है कि हम इनके साथ मिल जाए। अगर हमने अपना रास्ता पकड़ा हुआ होता तो ऐसा नहीं होना था। हम मिले, अच्छा आप करें क्या? मैं रिवायत जल्दी से पूरी करता हूँ, बहुत किया मैंने आपका। तो फरमाया कि क्या चाहिए इस शख्स के अंदर? फरमाया कि तवाज़ो, तखशो, इनाबा, कसरत ज़िक्रिल्लाह, अस्सौम व सलात, बीच में इमाम ने रोजा नमाज कहा और फिर फौरन कहा वल बिल बिल वालिदैन, वालिदैन से नेकी कर, वालिदैन से नेकी कर। पहले एक जमाना था, लोग कहते थे मसलन ये पूरी दुनिया से खराबी कर लेते थे, अपने वालिदैन बीवी बच्चों के साथ खराबी नहीं करते थे। अब वो कमीनेपन का दौर आया है कि इंसान सिर्फ अपने आप से बावफा है, अपने वालिदैन से भी बावफा नहीं। अब वो दौर हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए, और मुश्किल ये है कि जो हमें निकाल सकते हैं उनसे हमारा तमस्सुक खत्म हो गया। हम हमारा तमस्सुक किस बात पे रहा है? माजर चाहता हूँ एक बार और सख्त हूँ, हमारा तमस्सुक अहले बैत से रहेगा दुनिया लेने के लिए। हम आलम पे जाते हैं दुनिया लेने, ज्यारतों पे जाते हैं दुनिया लेने, उन्हें हमें हमारी दुनिया तकसीम करने के लिए भेजा गया था। दुनिया की कौन सी चीज अहले बैत की जानों के खून के एक खतरे के बराबर भी है। कौन सी चीज है? किसी खून के खतरे के बराबर भी दुनिया नहीं है। इस दुनिया को देने के लिए भेजे का खुदा है, कैसे हो सकता है? जो दुनिया की जिल्लत को वो बयान कर रहे थे वो दुनिया देने हमें आएंगे? अच्छा, हमारा उनसे ताल्लुक क्या रह गया? देखो तो हमारा हशर क्या हुआ? इमाम ने फरमाया कि कसरत जिक्रिल्लाह व सौम व सलात व बिर बिल वालिदैन और आगे खतरनाक तआहदुल जिनान मिन अल फुकरा व ज़विल मस्किना। और ये शख्स कहते हैं इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि अपने हमसायों में कमजोरों और मिस्किनों का ये ख्याल रखता है, कमजोरों और मिस्किनों का ख्याल रखता है। अब एक और मुसीबत है, हम हर चीज में एक अजीब मुश्किल आ गई। कमजोर मिस्किन का ख्याल रखता है और जो देता है व्हाट्सएप पर डालता है मैंने दिया है, जो देता है वह तख्ती के नीचे नाम लिखवाता है मैंने ये पंखा मैंने लगवाया है, ये अल्लाह के लिए था, अल्लाह के लिए था। व्हाट्सएप पे क्यों डाला था? अल्लाह के लिए था, तख्ती पे नाम क्यों लिखवाया था? अभी आलम ये हो गया, हमसे कहते मौलाना मेरे मरहूम के लिए फातिहा पढ़वा देना। अच्छा ठीक है, पढ़वा दूंगा। मैं गया, मैंने जाके कहा किसी मरहूम के लिए फातिहा के लिए कहा गया है, आप फातिहा पढ़े। बाद में मुझसे क्या मालूम नाम नहीं लिया आपने? अच्छा, मैंने नाम नहीं लिया तो ये समझ रहा है ऐसे जैसे चेक के ऊपर नहीं लिखा पे ही कौन है, ये बैंक में पढ़ा रहेगा कि अब किसके क्रेडिट में जाना है, ये पागल हो गया? खुदा का निजाम तो बैंकों की तरह चल रहा है क्या? ये नाम नहीं लिया, फरिश्ते कह रहे हैं फातिहा बीच में आ गई, पता नहीं किसके नाम की है क्योंकि लाउड स्पीकर पे नाम नहीं लिया गया। एक और आया बावलापुर से लड़ने के लिए, कहने का मौलाना आपने काम खराब कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने का मेरे मरहूम का नाम गलत लिया आपने। तो मैंने कहा तुम इसका मतलब है आप फरिश्ते बेचारे डर रहे होंगे कि असल कौन है जिसके लिए फातिहा गई, जो मेरे नाम तो गलत आ गया। इस दिमाग हमारे ठीक कुछ और हो गए क्या? ये दीन खुदा है भाई, दीन खुदा में अल्लाह नियतें देखता है, लॉर्ड स्पीकर का नाम थोड़ी देखता है। ये तख्तियों के ऊपर नाम लिखवा रहे हैं, ये क्या है? ये इससे दीन बनेगा? कभी नहीं बनेगा इससे दीन, इससे सिर्फ दिखावा बनेगा और कुछ नहीं होने वाला। इससे कोई सवाल नहीं बन रहा, सब खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा हमसे कहता तुमने दिखावे के लिए किया था, वो तुम्हें मिल गया था, मानता खत्म है। तभी वो जो इमाम ने फरमाया शिया की निशानी क्या है, तआहुद, कि वो अपने हमसायों में से जो मिस्कीन और फकीर हैं उनका ख्याल करेगा। अभी देखो एक मजे की बात है, मतलब मैं अभी आया हूं ना यहाँ पे, तो खैर मतलब मेरी गाड़ी अच्छी हो, लोग मुझे पहचानते हों कि यार इसके पास प्रॉपर्टी है, मैं किसी के पास जाकर ये कहूँ ना कि यार मुझे इतने पैसे दे देना, खड़े खड़े दे देगा, खड़े खड़े दे देगा। क्यों? उसे पता है आज मैं इसको पैसे दूंगा ना, चार चार काम कल निकलवा लूंगा उसको, सही। अब अगर कोई मिस्कीन आ गया मेरे पास और उसने उतना पैसा छोड़ दो उसका 10% भी मांगा, मैंने नहीं देना है। क्यों? ये मुझे क्या देगा? ये मुझे क्या देगा? ये होगा इसका मतलब क्या है? ये मेरा उस वक्त जो पहले वाले को देना था वो भी खुदा के लिए नहीं था, वो भी मैंने अपने काम नहीं करवाने के लिए दिया। अभी क्या रह गया हम लोगों के पास दीन में? चंद जाहिरी चीजें रह गई। और मैं मुझे गारंटी से मैं आपको कह सकता हूं जिस दीन में से रूह निकल जाती है उसका उसकी खाल भी कुछ अर्से बाद खत्म हो जाती है, खाल भी नहीं बचती, खाल भी चली जाती। और कतई मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं जिस तरह से हमारे दीन की इस वक्त हालत है ज्यादातर की रूह निकल गई है, ज्यादातर की रूह निकली है, हम सबको नजर आ रहा है, लेकिन हम एक दूसरे से छुपा रहे हैं, एक दूसरे के साथ चला रहे हैं। नहीं सही चले जाएगा, नहीं चलेगा, काम खराब हो गया, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वापस लाने की, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। امام نے فرمایا کہ کیا ہوگا ان کا؟ کہا کہ تواضع اس کی نشانی ہے، تخشع خدا کا خشیت ہوتا ہے اس کی، انابہ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے، ذات و نیاز کرتا ہے، کثرت ذکر اللہ، اللہ اس کو بار بار یاد آتا ہے کہ خدا ہے خدا ہے، صوم و صلات کرتا ہے، والدین سے نیکی کرتا ہے، ہم ساروں میں سے جو فقیر ہیں، ذوی المسکنہ ہیں، غارمین، غارمین کسے کہتے ہیں؟ غارمین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بے بس ہو گئے کسی معاملے کے اندر، بے بس ہو گئے، یعنی بظاہر صحیح ہیں لیکن کسی وجہ سے بے بس ہو گیا، اچانک ایک ایسی مشکل آئی ہے اس نے اس کو بے بس کر دیا، فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، لیکن اس وقت بے بس ہو گیا، اس وقت متعین کر دیا، تو اصل میں فقیر نہیں ہے، اصل میں مسکین نہیں ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے وائٹ کالرز ہوتے ہیں نا، سفید پوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، یہ غارمین ہوتے ہیں، ان کے فقیر نہیں ہوتے لیکن اپنی مصیبت میں پھنستے ہیں، یہ ان کا خیال کرتا ہے اور لیکن کیسے کرتا ہے؟ چھپا کے کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا کہ مثلا میں نے کیا، تو یہ جو ہمارے یہاں روش ہے یہ میرے خیال میں خدائی نہیں ہے، اور یہ سب ہم نے سیکھا ہے ان سے مادہ پرستوں سے، مادہ پرستوں کے کیا ہوتا ہے، ایک پروجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ فنڈ ریز کرنے کے لیے، فنڈ جمع کرنے کے لیے قرآن رکھتے ہیں، اس میں اعلان کرتے ہیں جو اتنے پیسے دے گا اس کا نام یہاں اعلان کیا جائے گا، جو اتنے پیسے دے گا اس کو ہم یہاں بلائیں گے، جو اتنے پیسے دے گا اس کو ہم یہاں بٹھائیں گے، ابھی ایک عقل مند ہے اس نے آسٹریلیا میں ایک جگہ دعائے کمیل پڑھوائی، صحیح دعائے کمیل پڑھی، اور اس میں آنے والوں کا ٹکٹ لگایا اور کہا کہ جو $50 کا ٹکٹ لے گا وہ پڑھانے والے کے پیچھے بیٹھے گا، دعائے کمیل میں بیٹھنے کی جگہ بھی بیچی ہے اس نے، ابھی یہی قرآن لے کے کراچی میں آیا تھا ایک دفعہ، وہ خدا کا شکر ہے کچھ دوستوں کو یاد آ گیا کہ نہیں یہاں نہیں چلے گا، تو وہ بند کروایا پھر اسے، ابھی ذرا سنتے ہیں کیا ہو رہا ہے، دعائے کمیل میں وہ کہاں بیٹھے گا اس پہ ٹکٹ دے گا، تانی نہیں سنا رہا ہوں، ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہاں یہ عالم ہے کیسے ہوگا، اچھا کیوں ہوا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر تھا نا وہ سامنے آفیشل کر دیا، اس لوگوں کے دلوں میں کیا تھا، ان لوگوں کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ زیادہ دیتا اس کو زیادہ عزت نہیں دی، اس نے اس کو آفیشل کر دیا، میڈیا کا جو کام ہے کہ میڈیا جو فوج سے فوج تر ہوتا جا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، 1970 کی دہائی میں جب میڈیا آیا تھا تو فوج تھا، نہیں تھا فوج، اب کیوں فوج ہے، اس کو پتا ہے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر لوگوں کے اندر فحاشی کی طلب نہ ہو تو کوئی چینل فحاشی نہیں دکھائے گا، جو دکھا رہے دکھائے اسی لیے رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے اس کی طلب ہے، تو اگر ہمیں معاشرے میں سے فحاشی ختم کرنی ہے نا پہلے اپنے دل میں سے ختم کرنی پڑے گی، ورنہ بار ختم نہیں ہوگی، بار پڑتی چلی جائے گی، اگر کسی بچی کو یہ پتا چل جائے کہ بے حیائی سے اس کی بے عزتی ہوگی تو بے حیائی کرے گی، تو اصل میک اپ کر اس لیے رہی ہے کہ اس کو احترام چاہیے، اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ بھائی میں اگر میک اپ کر کے بند سمجھ کے نکلوں گی لوگ بے حیا سمجھیں گے مجھے، میری بے عزتی ہوگی، نہیں آئے گی، پھر یہ مشکل آ گئی ہے ہماری، تو یہ ان کا خیال کرتا ہے، اس کے بعد غارمین، اور اس کے بعد کیا ہے، اور بہت خطرناک بات آگے آ گئی، صدق الحدیث، بات میں ہمیشہ سچا ہو، یہ تو خیر آفت مصیبت آ گئی، عذاب آ گیا، کون سچا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کون سچا رہا ہے، صدق الحدیث، تلاوت القرآن، تلاوت القرآن، اللہ اکبر، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر روز پڑھنے والے قرآن کتنے ہوں گے، اب میں نے کہہ رہا ہاتھ اٹھاؤ یہ کرو کر، میں گارنٹی سے بول رہا ہوں 20% بھی نہیں ہوں گے، امام فرمانے ہیں ہمارے شیخ کی نشانی ہی ہے یہ ایسا ہوتا ہے، اس کے بعد فرمانے ہیں وَقَفِّ الْأَلْسُنْ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرِ، اس کی زبان سے لوگوں کو برائی نہیں ملے گی، یہاں ہر آدمی گالیاں دینے بیٹھا ہے، ہر آدمی گھر کے اندر دیکھو کہے گا بچوں کو کیا کیا گالیاں دے رہے ہیں، کلچر بنی ہوئی ہے بیوی کو گالیاں دینا، ہم لوگ شیعہ، تو ایسا نہیں ہوتا، अगर आपको वाकई कोई काम करना है जिंदगी के अंदर, आप इन अहदीस को पढ़ें और अपने आप को इन अहदीस पर ढालना शुरू करें कि मुझे शिया बनना है, चाहे दुनिया कुछ भी करे। और ये मैं आपको गारंटी से अर्ज कर रहा हूं कि इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको माशरे में बेइज्जत करवाएगी। भाई आप माशरे में सच्चे मशहूर हो, इससे आपकी बेइज्जती होगी? लो सच्चे मशहूर लोग सर पर बिठाते हैं, ये भाई आदमी सच्चा है, क्यों सब झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोलता है। अच्छा अगर किसी को पता हो कि ये कभी मेरी बेइज्जती नहीं करेगा, सही, तो उसे बुरा समझते हैं। कौन बुरा समझेगा उसे? सब अच्छा समझते हैं कि ये कुछ भी हो जाए ये मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। अच्छा एक आदमी तकब्बुर नहीं दिखाता, इसे बुरा समझेंगे कि तकब्बुर नहीं, मुतकब्बिर नहीं? नहीं भाई, मुतकब्बिर को तो शायद कोई बुरा समझे, लेकिन जो तकब्बुर नहीं करता उसे कौन बुरा समझेगा? सही, इसमें दुनिया का भी फायदा है हमारा। तो अभी हम जिस रास्ते पे चले हैं ना, उसमें दुनिया मिल रही है, दिन तो है ही नहीं उसमें। आखिरी बात एक और हदीस अर्ज कर दूं, मौला इमाम दोहो इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम, अभी आप लोग आप में से कुछ लोगों को जल्दी जाना होगा, मैंने एक घंटा पूरा खा लिया, मैं कुछ सोच के आया था वो 40 मिनट में खत्म कर दूंगा, एक घंटा मैंने लगा लिया। तो आप और कुछ लोग अपने दिल दिल में कह रहे हैं यार किसी भी मौलवी को माइक दे दो तो छोड़ता नहीं है, ये बड़ी मुसीबत है। ये हदीस थोड़ी सी लंबी थी, इस वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। नहीं आखिरी हदीस अर्ज करता हूँ, इमाम दोगुम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, जाहिर है वो जुमला उन्होंने जवानों से इरशाद फरमाया, क्योंकि उसने शुरू में कहा है या माशर शबाब, ए जवानों, इस तरह का या माशर शबाब ए जवानों, इसका मतलब है इमाम ने जहां जुमला कहा है वहां पे जवान ज्यादा बैठे हैं। सही, उन्होंने कहा या माशर शबाब, खुदा की कसम हमने देखा है कि कोई दीन के पीछे गया हो तो खुदा ने उसको दुनिया भी दे दी। इमाम ने कहा खुदा की कसम हमने देखा है कि कोई दीन के पीछे गया हो तो खुदा ने उसको दुनिया भी दे दी। उसके बाद फरमाया खुदा की कसम हमने नहीं देखा कि कोई दुनिया के पीछे गया और दीन ले पाया, तो हमने नहीं देखा। अल्लाह दोबारा अर्ज करता हूँ, फरमाया खुदा की कसम हमने देखा है कि कोई दीन के पीछे गया और उसको खुदा ने दुनिया भी दे दी, और खुदा की कसम हमने नहीं देखा कि कोई दुनिया के पीछे गया हो और उसको दीन मिला हो, ये नहीं देखा। तो आप अपना फैसला खुद करो, आपने किसके पीछे जाना है। और ये दो पीछे जाने वाले इतने अलहदा हैं, इतने अलहदा हैं कि आप कभी धोखे में नहीं रहना कि मुझे नहीं पता चल रहा मैं दुनिया के पीछे हूं या दीन के पीछे। नहीं नहीं, इसमें कोई धोखा नहीं, ये लाइनें यूं हैं, ये ऐसी नहीं है कि आगे जाएगी गलत, नहीं बिल्कुल यूं लाइन। जो दीन के पीछे होता है उसकी लाइन कुछ और है, जो दुनिया के पीछे होता है उसकी लाइन कुछ और होती है। ये दो ऐसे धोखे में नहीं आना, कोई अपने आप को धोखा ना दे। अल्लाह से दुआ करते हैं खुदा हमें दीन पे रहने की सआदत नसीब फरमाए, खुदा से दुआ करते हैं पाक परवरदिगार बिहक़ मौला इमाम रज़ा, बिहक़ उनके अजदाद के, बिहक़ उनके औलाद तैयबा व ताहिरा के इस क़लील को आपसे कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार बिहक़ नबी औलाद नबी, बिहक़ कुरान करीम, उनकी नूरानियत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार बिहक़ नबी औलाद नबी, बिहक़ कुरान करीम, हमारे और हमारे तमाम मरहूमीन के तमाम गुनाह ने सगीरा और कबीरा की मग़फ़िरत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता नबी औलाद नबी का, तुझे वास्ता कुरान करीम का, तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजमत का, उनके पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की सआदत नसीब फरमा। जो दुनिया के अंदर मुश्किलात से दो चार हैं, हक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम इन मुश्किलात से आजादी रहाई नसीब फरमा। जो बेगुनाह जेलों के अंदर है आजादी और रहाई नसीब फरमा। जो बीमारियों में मुबतला है हक़ अहले बैत कुरान शिफाए आजिल कामिल नसीब फरमा। احباب پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخری زمان کی ضرور میں تعجیل کرنا، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. اے خدا ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بحق مولا امام رضا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بجاه نبيك وعجلته الطاهرين، اعطي سلامتي کے لیے، اپنی نسلوں کے اندر ایمان کی حفاظت کے لیے، ان شاء اللہ تمام مرحومین اور ہماری اور آپ کی مغفرت کے لیے، اور ان شاء اللہ ان دعاؤں کے صدقے میں خدا ہماری آخرت بخیر فرمائے، اس کے لیے ایک بار پھر دعا کیجیے محمد علی محمد.